नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 12th इतिहास आज अपन अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन, जो अध्याय नंबर 2 है। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में या मौर्यकालीन केंद्रीय और प्रांतीय शासन व्यवस्था पर टिप्पणी कह सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के विस्तार की विस्तृत जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं तात्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली और सत्ता का केंद्रीकरण भी हुआ। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा कैसा था, तो सबसे पहले अपन लेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंदर प्रमुख होता था राजा। मौर्य काल में राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था। महत्वपूर्ण कार्य एवं नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राजा में ही निहित होती थी। केंद्रीय प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग या भाग आता है, वो आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राजा को परामर्श देने हेतु होती थी, जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा स्वयं करता था। मंत्रिपरिषद के अलावा 3 से 4 सदस्यों वाली एक आंतरिक परिषद होती थी, जिसे मंत्रिणी भी कहा जाता था। तीसरा आता है अधिकारी। प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन 18 विभागों में विभाजित था। उन 18 विभागों को तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च पदाधिकारी भी होता था, जिसे अमात्य भी कहते थे। इन अमात्यों में कोषाध्यक्ष, कर्मांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्ष का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये राज्य की आर्थिक गतिविधियां कृषि है, व्यापार है, वाणिज्य है, बाट और माप है, कतई बुनाई है, खान है, वनों आदि का नियम व नियंत्रण करते थे। नंबर 4 आता है, वह है नगर प्रबंध। मेगस्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार नगर का प्रबंध करने हेतु 5-5 सदस्यों की कुल 6 समितियां होती थी, जो अलग अलग कार्यों के प्रति अपनी जवाबदेही होती थी, जैसे उद्योग एवं शिल्प संबंधी कार्य, विदेशी यात्रियों की देखरेख करना, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य, जनगणना संबंधी कार्य, निर्मित वस्तुओं की देखभाल करना, बिक्री कर के रूप में कर विवरण रखना आदि। ये सारे जवाबदेह कार्य नगर प्रबंध के होते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नागरिक नगर प्रशासन का अध्यक्ष होता था और गोप तथा स्थानिक उसके कार्यों में सहायता करते थे। नंबर 5 आता है सैन्य व्यवस्था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, जबकि युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैनिक प्रशासन 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों के हाथों में था, जो पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात एवं नौसेना से संबंधित थी। नंबर 6 आता है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य प्रशासन या साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कुशल गुप्तचर व्यवस्था भी सुनियोजित तरीके से या सुव्यवस्थित तरीके से की गई थी। जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखती थी। मौर्य काल में दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक थे संस्था, एक ही स्थान पर रहकर ये कार्य करती थी, और दूसरी आती है संसार या संसारा, ये भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। नंबर 7 आता है न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का प्रमुख स्रोत धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजशासन था। धर्म स्थानीय एवं कंटक शोधन न्यायालय, दीवानी तथा फौजदारी मामले सुलझाते थे। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजू व्यावहारिक आदि न्यायिक अधिकारी थे। संग्रहण एवं दृढ़ मुख स्थानीय व जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत ही कठोर थी। नंबर 8 आता है राजस्व व्यवस्था। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी समाहर्ता तथा राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी संनिधाता कहलाता था। इस काल में राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत दुर्ग, राष्ट्र, वज्र, वन, सेतु, खदानें तथा आयात निर्यात थे। नंबर 9 आता है जन उपयोगी कार्य। मौर्य साम्राज्य में जन उपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। ये तो थी केंद्रीय शासन व्यवस्था। अब आता है प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 4 प्रांत देखने को मिलते हैं। वो है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत। वह अशोक के काल में 5वें प्रांत के रूप में कलिंग का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। सामान्यतः इन प्रांतों का प्रशासक राजकुमार होता था, जो मंत्रिपरिषद व अमात्यों के माध्यम से शासन संचालन करता था। धर्म महामात्र तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे, जो धम्म एवं अन्य कार्य करते थे। प्रांतों को आहार या विषय में विभाजित किया गया था, जो विषपति के अधीन होते थे। जनपद व ग्रामीण प्रशासन। जनपद स्तर पर प्रदेष्ट, राजुक व युक्त नामक अधिकारी थे, जो भूमि, न्याय व लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे। ग्रामीण स्त्री अधिकारी था। गोप एवं स्थानीय जनपद व गांवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, जिसमें नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था प्राय नगण्य थी। धन्यवाद।